आगे चलते हैं। उदुउहुम लिआबाइहिम हुवा अक्सतु इंदल्लाह। उदुउहुम फरमाया कि पुकारो तुम उनको, लिआबाइहिम इनके बाप की तरफ निस्बत करके। तो उदु कौन है? बुलाने वाले, पुकारने वाले। हुम किनको? जिनको मुतबन्ना बनाया हुआ था, जिनको मुंह बोला बेटा कहा जाता था। कहा कि उनको तुम पुकारो, लिआबाइहिम इनके बापों की निस्बत से। हुआ अक्सतु, ये ज्यादा मुनसिफाना बात है, इंदल्लाह अल्लाह के नजदीक। तो ये है पूरा इंसाफ अल्लाह के नजदीक। अब आप देखिए कि अब दोबारा जो है ये कहा जा रहा है कि मुंह बोले बेटों को इनके बापों की निस्बत से पुकारा जाए, ये अल्लाह के नजदीक ज्यादा मुनसिफाना बात है। मसलन जब ये हुक्म नाफिज हुआ, क्योंकि जो ही हुक्म नाजिल हुआ तो फौरन इसको नाफिज किया गया। अब जैद बिन मोहम्मद जो थे वो जैद बिन हारिसा रजी अल्लाह अन्हु के नाम से पुकारे जाने लगे। कुछ ऐसे भी थे जिनको अपने बाप का पता ही नहीं था। जैसे आप देख लीजिए, हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु के बाप का इल्म खुद उन्हें भी नहीं था। यानी हजरत सलमान फारसी को नहीं पता था कि मेरा बाप कौन है। बचपन ही में उन्हें गुलाम बना लिया गया। वो खुद फरमाते हैं कि मुझे 10 से ज्यादा मर्तबा बेचा और खरीदा गया। ये बुखारी की रवायत है। अब 10 से ज्यादा मर्तबा अगर बेचा और खरीदा गया है तो फिर कैसे पता चले, है ना? इसी तरह हजरत सुहेब रूमी रजी अल्लाह अन्हो, जो असल में ईरानी थे, मगर अहले रूम ने जब फारिस पर हमला किया तो उन्हें बचपन ही में कैदी बनाकर रूम ले गए थे। और दोनों सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हुमा को अपने अपने वालिद के नाम तक भी मालूम नहीं थे। तो अब अल्लाह ताला यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो मुंह बोले बेटे हैं इनके बापों की निस्बत से उनको पुकारो, ताकि उनका नस्ल जो है वो बाकी रहे, यानी उनके नस्ल का जो इम्तियाज है उसका पता चलता रहे। तो ये बात जो है ना, ये अल्लाह ताला के कानून में अदल और हक के लिहाज से ज्यादा अकरब है, ज्यादा पसंदीदा है। और अगर लोग इसकी खिलाफ वर्जी करेंगे और मुंह बोले बेटों को बिल्कुल बेटों के दर्जे में कर देंगे तो क्या है कि ये चीज सही नहीं है। फ़ाइलम तालमु आबाहुम, अगर तुम्हें मालूम नहीं है, अगर तुम्हें क्या मालूम नहीं है, फ़ाइलम तालमु आबाहुम इनके बाप का पता ही नहीं है। जैसे हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह की मिसाल मैंने आपको दी, सुहेब रूमी रजी अल्लाह की, या मसलन अफगानिस्तान के जिहाद के नतीजे बहुत से ऐसे बच्चे हैं, या कश्मीर है, फिलिस्तीन है, या कहीं भी दुनिया में ऐसे मुसलमान हैं कि जिनका किसी भी वजह से उनके बाप के नाम का पता ही नहीं है। तो क्या है वो? फ़ाइख्वानुकुम फिद्दीनी, तो वो तुम्हारे दीनी भाई हैं। वा मवालीकुम, और तुम्हारे रफीक हैं। मवालीकुम जो है ये मौलाम या से है, मौला की जमा है मवाली, और ये लफ्ज जो है ये इस्तेमाल होता है भाई के लिए, और ये लफ्ज इस्तेमाल होता है किसके लिए? दोस्त के लिए। यानी तुम्हारे ये दोस्त हैं, तुम्हारे मौला हैं, दोस्त हैं, तुम्हारे करीबी लोग हैं, तुम्हारे रफीक हैं। अब आप देखें कि जैसे अभी मेरे सामने एक, मैंने कहा ना कि आप लोग सवाल लिखें, तो एक सवाल लिखा हुआ भी आया था कि जो है वो अगर नाम का पता ही नहीं है, अफगानी बच्चे हैं उनके वालदैन का पता ही नहीं है, तो ऐसे में क्या हुक्म है? तो अल्लाह ताला ने क्या बात बताई कि किसी का अगर नाम नहीं पता उसके वालदैन का, इस सूरत में भी ये जायज नहीं है कि किसी शख्स से खाम खा इसका नसब मिलाया जाए, उसको फिर अपना नाम दे दिया जाए। तो बेशक उलमा क्या कहते हैं कि उसको उसका कुछ फर्जी नाम रखा जाएगा या कुछ भी होगा, बहरहाल वो आपका बेटा जो है या आपकी बेटी जो है वो नहीं है। तो फिर आपका उनका रिश्ता क्या है? फ़ाइख्वानुकुम, तो वो तुम्हारे भाई हैं। इख्वान अख की जमा है, और इख्वान किसे कहते हैं? भाई भाई को कहते हैं। तो अब ऐसा नहीं हो सकता कि जो ऐसे, जैसे एक आप देखें कि भाइयों की दो किस्में होती हैं, बहन भाई की दो किस्म है। एक है دین کی بنیاد پر اور ایک ہے رحم کی بنیاد پر. تو دین کی بنیاد پر جیسے فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ, مومن بھائی بھائی ہیں, ایک تو یہ بنیاد ہے. اور دوسرا رشتہ کیا ہے؟ دوسرا رشتہ ہے رحم کا رشتہ, الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ کا اصول, کہ جو جتنا جو ہے وہ قریب ہوگا. تو اب یہاں پر جو بات بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ جن کے نام باپ کا نام پتہ نہیں ہے, فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ, تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں, رفیق ہیں. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ, اور نہیں ہے تم پر کوئی گناہ, فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ, فِيمَا اس چیز کے بارے میں, أَخْطَأْتُمْ بِهِ جس میں تم نے کوئی خطا کی ہے, یعنی اگر تم سے کوئی خطا ہو گئی ہے, تم سے کوئی نادانستہ طور پر جو ہے وہ کوتاہی ہو گئی ہے, غلطی ہو گئی ہے, تو اس میں تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. اب آپ دیکھیں جناح, جناح کا لفظ جو ہے اس کے معنی کیا ہیں؟ یہ گناہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اگر جناح ہوتا تو بازو, پر, کندھے کے لیے آتا ہے, جناحین, ہے نا. تو اب یہاں پہ کیا ہے کہ تم پر کوئی بھی گناہ نہیں ہے, فیما اس چیز کے بارے میں, اخطأتم به, جو تم سے خطا ہو گئی ہے. خطا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ غلطی کا ہو جانا. تو ایک کام ہے کہ انسان جو ہے وہ دیدہ دانستہ کرتا ہے, اور دوسرا کام کیسا ہے کہ انسان جو ہے وہ اسے غلطی سے ہو جاتا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر کیا کہا, اخطأتم, کہ جو تم نے جو ہے وہ غلطی کی ہے. ایک بات آپ یاد رکھیے, خطیعتن, خطیعتن کا معنی ہوتا ہے گناہ, لیکن اخطأ اس کا معنی ہے غلطی سے گناہ کرنا. جیسے ہوتا ہے نا کہ کسی سے کوئی چوک ہو جائے, کوئی خطا ہو جائے, تو جان بوجھ کر نہیں بلکہ کیا ہے کہ غلطی سے اس سے جو ہے وہ کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے. تو یہاں پر جو بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے پہلے تو پتہ ہی نہیں تھا نا, پتہ ہی نہیں تھا, تو اس لیے جو ہے وہ غلطی سے تم لوگ جو تھے یہ کرتے رہے, کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بھی زید بن محمد کے نام سے زید کو پکارتے تھے, اور آپ نے اس کو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا, آپ کا متبنہ تھا, اور اسی طرح عرب کی سوسائٹی میں تو اس چیز کا بہت زیادہ رواج تھا. تو کہا کہ غلطی سے اگر کچھ ہو گیا, بھولے سے کچھ ہو گیا, تو اس کی کوئی بات نہیں, لیکن لیکن جو تعمدت قلوبکم, جو تمہارے دلوں نے جو ہے وہ ٹیک لگائی ہے, عین میم دال کے معنی کیا ہے, خیمے کی, عمود خیمے کی اس لکڑی کو کہتے ہیں جس میں خیمے کا انحصار ہو. تو لیکن اللہ تعالی اس بات پر ضرور تمہاری گرفت کرے گا, ضرور تمہیں پوچھے گا جو تم نے جان بوجھ کر کیے ہیں, جس کا تم دل سے ارادہ کرو. آپ دیکھتے نا, آپ کہتی ہیں عمدن او خطان, سرن او لانیتا, تو عمد کیا ہے؟ دیدہ دانستہ کرنا, اور خطا کیا ہے؟ بھولے سے کرنا. تو یہاں پر اللہ رب العزت جو ہیں وہ تنبیہ کر رہے ہیں, یہ بات بتا رہے ہیں, اور بات کیا بتائی جا رہی ہے کہ تم لوگ جو ہو جان بوجھ کر جو کچھ بھی کرو گے اس پہ تو اللہ ضرور پوچھے گا, اور جو تم سے بھولے سے ہو گئی ہے تو وہ چیز جو ہے وہ اللہ تعالی معاف کر دے گا. اور اللہ تعالی کی ذات تو بہت ہی محبت کرنے والی ہے. اور آپ دیکھ لیجئے کہ ایک طرف اخطأتم آیا, دوسری طرف تعمدت, یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. اور آپ دیکھیں خطا ایسے گناہ کو کرتے ہیں جس کے کرنے کا انسان کا ارادہ نہ ہو مگر اتفاقاً ہو جائے یا بھول کر ہو جائے, ہے نا. مثلا شکاری نے شیر کو تیر مارا لیکن کسی اور کو لگ جائے, تیر تو کسی کو مارا تھا مگر وہ کسی انسان کو لگ گیا تو مر گیا, تو یہ کیا قتل خطا ہے, ہے نا. تو ایسے میں کیا ہو سکتا ہے کہ اگر اب تک کی زندگی میں अरब की सोसाइटी में इस बात का रवाज था और लोग ये गलत काम करते रहे, तो अब क्या है कि उनको अल्लाह ताला से माफी मांगनी चाहिए, अस्तगफार करना चाहिए, उसके बदले में नेक काम करने चाहिए ताकि अल्लाह ताला उनके गुनाह जो है वो माफ कर दे। तो ये है असल बात जो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो बता रहे हैं कि असल बात क्या है कि ये तुम्हारे एक तो दीनी भाई हैं और दूसरी तरफ क्या है, वह मवाली कुम, तुम्हारे दोस्त और रफीक हैं, और तीसरी तरफ आप यूं भी कह सकते हैं कि मवाली जो है इसके मानी क्या है, क्योंकि अरबों में क्या था कि गुलाम और आका का बहुत रवाज था, है ना, तो खानदान और कबीलों के कबीले उनके यहाँ क्या था, हल्फ और विला का कानून पाया जाता था कि कोई भी खानदान या कबीला उसमें बाहर से कोई शख्स आकर उसमें शामिल हो सकता था। और फिर होता क्या था कि जिस खानदान में वो आके शामिल होता था तो खानदान या कबीले में जब वो आके शामिल हुआ तो खानदान वाले उसको अपने अंदर ले लेते थे और उसमें फिर हल्फ होता था, हल्फ बकायदा, और फिर क्या होता था कि वो इस खानदान का मौला समझा जाता, मौला से मुराद क्या है, दोस्त रफीक समझा जाता, और जुमला हकूक और जिम्मेदारियों में वो उस खानदान के साथ जो था वो शामिल हो जाता, हत्ता कि अगर वो कत्ल हो जाता तो जिस खानदान या कबीले का वो मौला होता तो उसको ये हक हासिल होता कि वो इसके किसास का मुतालबा करे, क्योंकि उन्होंने उसको अपना जैसे एक वलायत का एक करीबी जो ताल्लुक और रिश्ता जो था वो लोग बना लेते थे। तो इसका मतलब कि मौला अल-क़ौम मिनहुम, कौम का मौला उन्हीं के अंदर का एक फर्द शुमार होगा। अरबों में ये भी एक रवाज था जो कि उनका एक माशरती उसूल था कि इस्लाम ने में क्या था कि किसी खानदान के आजाद करदा गुलाम का विला भी आजाद करने वाले खानदान को हासिल होता। मसलन अगर किसी ने किसी के पास कोई गुलाम है, विलायत है ना, तो अब उसके पास कोई गुलाम है और अब वो गुलाम को उसने कर दिया आजाद, अब हुआ क्या कि वो आजाद करदा गुलाम गया मर, अब इसका वारिस कौन बनेगा, वो जिसने आजाद किया है वो उसका जो है वो वारिस बनेगा। तो विला के ताल्लुक की बिना पर इसकी विरासत जो थी ना इस आजाद करने वाले को पहुंचती। तो अब आप देख लें कि ये जो था मवालीकुम, ये बेशक आका और गुलाम का रिश्ता है, या आजाद भी कर दिया तो उनका उनके यहाँ एक रवाज पा गया था कि फिर भी वो जिम्मेदार बनता था कबीला या फर्द, या फिर ये कि वली रफीक मौला मुराद क्या है कि खुद ही कोई किसी खानदान में जाकर मिल गया, है ना, तो मुख्तलिफ तरह से उनके यहाँ जो रस्म और रवाज थे। तो इस आयत में ये इशारा किया गया है कि अगर किसी के जैसे कोई मुतबन्नी है उसको उसके बाप का पता ही नहीं है तो अब क्या होगा कि आपस में दीनी भाई हैं और मौला की हैसियत है, गोया के मौला से मुराद क्या है कि वो रफीक हैं, वो आपस में दोस्त हैं, लेकिन नसब नहीं आपस में मिल सकता। तो असल बात क्या है कि नसब नहीं मिल सकता, और अगर इंसान जो है वो भूल चूक के कुछ भी गलती कर देता है तो अल्लाह ताला उसको माफ कर देंगे, लेकिन जानबूझकर इंसान जो कुछ भी करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं कि उसके बारे में तुमसे जो है वो पूछा जाएगा। ये चीजें गुनाह हैं जिसका तुम कसद और